Recording it.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو یہ جو آیات ابھی تلاوت کی گئیں ان سے لے کر کے آخر تک، وللہ عاقبۃ الامور، آیات نمبر 39-41. تو اس میں ہم معارف و مسائل کل پڑھنا شروع کر چکے تھے، اور ہم نے یہ پیراگراف پڑھ لیا تھا کہ جہاد و قتال کی ایک حکمت ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں ولولا دفع اللہ الناس، اس میں جہاد و قتال کی حکمت کا اور اس کا بیان ہے کہ یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے. پچھلے انبیاء اور ان کی امتوں کو بھی قتال کفار کے احکام دیے گئے ہیں، اور اگر ایسا نہ کیا جاتا تو کسی مذہب اور دین کی خیر نہیں تھی. جیسے محاورتن کہتے ہیں نا، بھائی اس کی خیر نہیں تھی، تو یعنی اس کے لیے پھر بہت مشکل ہو جاتی. ٹھیک ہے، سارے ہی دین و مذہب اور ان کی عبادت گاہیں ڈھا دی جاتی. اور لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد، تو اس میں ہم نے پچھلی کلاس میں، بلکہ اس سے پچھلی کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جو مشکل احکامات ہوتے ہیں نا، بظاہر جو مشکل نظر آ رہے ہوتے ہیں انسان کے لیے، جیسے روزہ. ٹھیک ہے، تو روزہ جو ہے وہ ایک مشکل حکم تھا کہ بھائی جو چیزیں جائز ہیں، ایون یعنی معاشرتی اعتبار سے بھی، عرف کے اعتبار سے بھی وہ جائز ہیں، اور ایون آپ کے دین کے اندر بھی وہ جائز ہیں، ہے نا، تو ان چیزوں کو بھی چھوڑ دینے کا حکم 30 دن تک. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ایکسپلینیشنز دیں کہ بھائی یہ پہلے بھی قوموں کے اوپر فرض کیا گیا تھا، صرف تمہارے اوپر فرض نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، اور دوسری کیا ایکسپلینیشن دی کہ لعلکم تتقون، کہ تم جو ہے وہ تاکہ متقی بن جاؤ، ہے نا، تو اس کو تم جب کرو گے، روزے کے اوپر عمل کرو گے، تو اس سے تمہارے لیے تقوی اختیار کرنا ممکن ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا. اور تقوی کی جو فضیلتیں ہیں وہ دیگر قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جا بجا بیان فرمائی ہوئی ہیں کہ متقیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. دنیا میں ان کو فرقان عطا فرمایا جاتا ہے، اور ان کے جو ہے وہ یعنی دل کو سکون ملتا ہے، اور آخرت کے اندر متقیوں کے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا خزانے بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں. تو اسی طرح سے یہ جو قتال کا حکم آیا تھا کہ ایک آئیڈیالوجی کے لیے، ایک سوچ کے لیے، ایک فکر کے لیے، تم جو ہے وہ میرے نبی کی بات پر لبیک کہتے ہوئے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، نکل کھڑے ہو، تو یہ بھی ایک مشکل حکم تھا، اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایکسپلینیشنز دیں. ٹھیک ہے، سمجھایا ہمیں کہ بھئی پہلے بھی ہوا قوموں کے اوپر ہوا ہے یہ چیز، اور اگر نہ ہوتی تو پھر اس سے یہ نقصان ہوتا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھنا شروع ہو جائے کہ اب جو ہے نا وہ ہر حکم کی ایکسپلینیشن ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے ایکسپلینیشن دی ہے حکم کی، تو اس وجہ سے اب جو ہے نا وہ جو حکم دینے والا ہوگا، ٹھیک ہے، جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے اول الامر بنایا، حکم والا بنایا. اول الامر کی کیا تشریح کی جاتی ہے؟ حکم والا، کہ جس کے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ وہ حکم دے سکتا ہے، کسی کی طرف سے اس کو یہ اتھارٹی ملی ہے، एक तो अल्लाह ताला के पास अपनी अथॉरिटी है ना कि उसने सब कुछ तख्लीक किया, उसका हर चीज का मालिक है, हर चीज का खालिक है, तो उसके पास तो अथॉरिटी उसकी, जिसको कंप्यूटर की जुबान में कहते हैं बिल्ट इन, है ना, यानी इनहेरेंट अथॉरिटी है अल्लाह ताला की। लेकिन अल्लाह ताला के अलावा भी हैं कि जिनके पास अथॉरिटी है, वो कौन है जिनको अथॉरिटी अल्लाह ताला ने दी, ठीक है, जैसे अल्लाह का रसूल, ठीक है। अल्लाह के रसूल क्या है, एक इंसान है ना, वो भी दुनिया के अंदर जो है वो जिस तरह बाकी इंसान आते हैं तरीका वही है, रसूल के भी दुनिया के अंदर आने का वही तरीका है, ठीक है ना। रसूल के भी दुनिया के अंदर जो सरवाइव करने का तरीका है, खाना पीना, ठीक है ना, और दीगर जो जरूरियात हैं, रसूल की भी वही जरूरियात हैं, रसूल की भी वही फिजिकल, बजाहिर फिजिकल एनाटमी वगैरह सब कुछ वही है जो एक नॉर्मल आदमी की होती है। तो उस शख्स के पास, उस इंसान के पास ये अथॉरिटी कि उसकी अताअत की जाएगी, उसका हुक्म किया माना जाएगा, ये अथॉरिटी कहाँ से आई, ये अल्लाह ताला ने उसको ये अथॉरिटी दी, तो उसके पास ये अथॉरिटी आ गई, ठीक है। उसी तरीके से जो शरई हाकिम होता है, ठीक है, शरई हाकिम के जिसके ऊपर जो है वो या तो अवाम ने बैत करी, अवाम भी में भी एक एक बंदा अवाम का बैत नहीं, बल्कि अवाम के अंदर जो 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 लीडर्स थे, जो खवास थे, जैसे कबीलों के सरदार थे या जो उलमाए कराम थे, ऐसे लोगों ने उसके हाथ पे बैत कर ली, ठीक है ना, या जो पिछला लीडर था उसने इसको अपने दुनिया से जाने से पहले लीडरशिप जो है वो सुपुर्द कर दी, ठीक है, लीडरशिप सुपुर्द कर दी, जैसे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लीडरशिप सुपुर्द कर दी, ठीक है ना। कोई उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मामला वो वैसा कोई थोड़ी था, ठीक है, कि हाँ, तो उन्होंने सपोर्ट कर दी, तो इससे जो है वो उमर रतान के पास अथॉरिटी आ गई कि अब जो है ना उनका हुक्म भी, ये दो तरीके थे लीडर मुसलमानों का, अमीर अमीरुल मोमिनीन बनने का, अब अमीरुल मोमिनीन के पास भी अथॉरिटी आ गई कि उसकी भी अताअत की जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से एक घर के अंदर, एक घर के अंदर भी एक अथॉरिटी है जो कि अल्लाह ताला ने घर के अंदर जो मर्द होता है शौहर, ठीक है ना, घर के अंदर जो बच्चों का बाप होता है, बीवी का शौहर होता है, उसको एक अथॉरिटी अल्लाह ताला ने दी है, ठीक है, क्योंकि अल्लाह के रसूल के वास्ते से जो है वो हम तक पहुंचती है कि भाई शौहर की अताअत करना बीवी के ऊपर, ठीक है। तो ये अथॉरिटी जो है वो भी उसके पास कहाँ से आ गई, यानी वो जो शौहर होता है वो क्या है, मतलब उसके अंदर कोई 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 सुरखाब के पर लगे हुए होते हैं, उसके अंदर कुछ ने कोई IQ का एग्जाम दिया होता है, जाकर के वो किसी SAT का एग्जाम दिया होता है उसने, कोई और जो है वो MCAT, पता नहीं कौन कौन से ये सारे टेस्ट होते हैं, है ना, वो और भी बहुत सारे हैं इंटेलिजेंस टेस्ट करने के दुनिया के अंदर एक से एक जो है वो बनाए हुए। तो क्या छोर साहब जो है वो अपना IQ टेस्ट दे करके कोई बहुत बड़ा स्कोर लेकर के आते हैं, फिर उनको ये अथॉरिटी मिलती है, ठीक है, या उनको जो है वो कोई उन्होंने आसमान से तारे तोड़ करके ले आए होते हैं, फिर उसके बाद उनको ये अथॉरिटी मिलती है। बल्कि कैसे ये अथॉरिटी मिलती है, शौहर को ये अथॉरिटी कैसे मिलती है, शौहर को अथॉरिटी मिलती है कि जब उसका शरई निकाह हो जाता है, शरई तौर पर वो निकाह के अंदर बीवी के साथ जो है वो बंध जाता है, ठीक है ना, बीवी उसके साथ बन जाती है, बीवी के साथ बन जाता है, अब शौहर को भी जो है ये एक अथॉरिटी मिल गई कि उसकी बीवी ने अताअत करनी है, ठीक है ना, बीवी ने उसकी अताअत करनी है, ठीक है। तो ये जो अथॉरिटीज हैं ऊपर, अच्छा, इसके ऊपर एक जिमनी सवाल, बस वही बात के शैतान का जो है वो रास्ता बंद करने के लिए, ठीक है, कि शौहर को ये अथॉरिटी मिल गई, ठीक है, निकाह के जरिए से, अमीरुल मोमिनीन को अथॉरिटी मिल गई बैत के जरिए से, या पिछले अमीर के इसको अथॉरिटी देने के जरिए से, ठीक है, रसूल को अथॉरिटी मिल गई अल्लाह के उसको अथॉरिटी दे देने के जरिए से, ठीक है, जिब्राइल अमीन के आ जाने के जरिए से रसूल को अथॉरिटी मिल गई, ठीक है ना, रसूल को कैसे अथॉरिटी मिली, जिब्राइल अमीन के वास्ते से अथॉरिटी मिली, ठीक है। अमीरुल मोमिनीन को कैसे अथॉरिटी मिली, मुसलमानों के अमीर के जरिए से मिली, या मुसलमानों के खवास के बैत के जरिए से मिली। शौहर को अथॉरिटी कैसे मिली, निकाह के जरिए से मिली, ठीक है ना। अब ये अथॉरिटी एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है, एब्सोल्यूट यानी अंडर नो मैटर व्हाट सर्कमस्टांसेस, क्या ये अथॉरिटी होती है, ठीक है, नो मैटर व्हाट सर्कमस्टांसेस, चाहे कुछ भी हो, एब्सोल्यूट अथॉरिटी, मुतलकन अथॉरिटी वो नहीं होती, बल्कि इसके अंदर एक क्लॉज होती है। वो क्लॉज क्या है, ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, ठीक है, खालिक की जो नाफरमानी है ना उसमें अतात नहीं की जाएगी। खालिक की नाफरमानी वाला अगर कोई ये हुक्म देती है ये अथॉरिटी, तो उसमें उसकी अतात नहीं की जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो है इसके अंदर एग्जिट क्लॉज कहलाएगा। अब ये एग्जिट क्लॉज रसूल पर अप्लाई नहीं होता, अप्लाई तो इन प्रिंसिपल तो अप्लाई होता है, लेकिन इन प्रैक्टिकली स्पीकिंग रसूल पर अप्लाई नहीं होता, इसलिए कि रसूल की जुबान से ही अल्लाह का हुक्म मिलता है हमें, ठीक है ना। तो रसूल का कोई हुक्म अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है, ठीक है ना, मुमकिन ही नहीं है कि रसूल का कोई हुक्म ऐसा हो जो कि अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हो, ठीक है। तो रसूल को जो है वो फिर आप एक इस मामले में एक्सेप्शन बना लेते हैं, लेकिन जो अमीरुल मोमिनीन है उसके अंदर ये वाला एग्जिट क्लॉज अप्लाई होता है कि अमीरुल मोमिनीन साहब भी कोई ऐसा अगर हुक्म दे दें, ठीक है ना, जो कि मुमकिन है कि वो रसूल तो नहीं है, ठीक है ना, तो वो एक हुक्म ऐसा दे सकते हैं जो कि प्री एस्टैब्लिश हुक्म के खिलाफ हुक्म हो, ठीक है, जो प्री एस्टैब्लिश कुरान और सुन्नत का हुक्म है उसके खिलाफ हो, तो फिर ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक। उसी तरीके से शौहर के ऊपर भी ये वाला क्लॉज अप्लाई होता है कि वो अगर ये अथॉरिटी यानी किसी हराम काम के लिए, किसी मकरूह तहरीमी काम के लिए अगर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, तो उसके अंदर फिर शौहर की अतात नहीं की जाएगी, ठीक है ना। तो हम आपको बेसिकली यहाँ पे जो समझा रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो क्या कि अल्लाह ताला ने अपने जो अथॉरिटी है वो अपने बंदों को दी है, ठीक है ना, अपने बंदों को वो अथॉरिटी दी हुई है विद दिस एक्सेप्शनल क्लॉज, ठीक है, ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक वाले एक्सेप्शन क्लॉज के जरिए से, ठीक है। तो अब जो है ना ये ऊपर वाली जो अथॉरिटी है वो क्या करती है, वो हुक्म देती है नीचे वालों को कि भाई आप ऐसे काम करें, आप ये वाला काम नहीं करें, आप वो वाला काम करें। तो क्या हर हुक्म के साथ उस ऊपर वाली अथॉरिटी को एक्सप्लेनेशन देनी जरूरी है? क्या हर हुक्म के साथ एक्सप्लेनेशन देनी जरूरी है? नहीं, हर हुक्म के साथ एक्सप्लेनेशन देनी जरूरी नहीं है, ठीक है ना। यानी सुन्नत अल्लाह, यहाँ पे जो अल्लाह ताला की सुन्नत नजर आ रही है ना कि जी अल्लाह ताला ने एक्सप्लेनेशन दी, तो इसी सुन्नत को हम हर जगह इन्वोक नहीं कर सकते कि जी अब चूंकि अल्लाह ने हर चीज अपना, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिहाद के हुक्म की और रोजे के हुक्म की जो है वो एक्सप्लेनेशन दी है, इस वजह से शौहर के लिए भी फर्ज है कि वो हर हुक्म की एक्सप्लेनेशन दे, क्योंकि ये अल्लाह की सुन्नत है। नहीं, ये अल्लाह की सुन्नत नहीं है, ये एक्सेप्शनल केस है, ये एक्सेप्शनल केस है। हर हर हुक्म के ऊपर अल्लाह ताला ने एक्सप्लेनेशंस नहीं दी हैं, हर हर हुक्म के ऊपर नहीं दी हैं, जो इस तरह के मुश्किल हुक्म नहीं थे उनके ऊपर ये इस किस्म की एक्सप्लेनेशंस नहीं है। सिंपल हुक्म के ऊपर बस ये है कि तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है तुम मानो, ठीक है ना, तुम्हें समझ में आए या ना समझ में आए तुम मानो, ठीक है ना। ये हमारी ड्यूटी नहीं है कि हम जो है वो एक्सप्लेनेशंस आपको हर मरतबा सामने प्रोवाइड करें, ठीक है। तो ये एक उसूल की बात है, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो फिर पूछ लें, या आपके जहन में कोई सवाल हो इसके ऊपर तो वो कर लीजिए। आगे हम चलते हैं कि आयत में सवामिअ की जमा है, ठीक है, सवामिअ जो है वो वाहिद का सीगा, वाहिद का टेंस है, और सवामिअ इसकी जमा का टेंस है, जो नसारा के तारिक दुनिया राहिबों की मखसूस इबादत गाह को कहा जाता है, ठीक है। यानी मॉन्क्स क्रिश्चियंस के अंदर राहिब मॉन्क्स जिनको इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। इब्तिदा में क्रिश्चियनिटी के अंदर क्या हुआ था कि जो तौहीद के ऊपर कायम क्रिश्चियंस थे, जब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमानों पे उठा लिया, ठीक है, तो ईसा अलैहिस्सलाम के जो हवारी थे ना, 12 हवारी, हाँ बल्कि बच्चों की क्लास में वो सवाल भी हुआ था 12 वाले नंबर के ऊपर, तो ये वाला याद ही नहीं आया उस वक्त, अभी रिसेंटली जो लोग थे उनको याद आ गया होगा कि हवारी भी 12 थे ईसा अलैहिस्सलाम के, जैसे याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, नबी अलैहिस्सलाम के दादा अब्दुल मुतलिब के 12 बेटे थे, ठीक है ना, वैसे साल में 12 महीने वगैरह, ये और भी चीजें हैं, तो हवारी भी 12 ही थे, अजीब, ठीक है, अल्लाह ताला की हिकमत भाई इस नंबर के अंदर रखा हुआ है कि भाई ये चंद चीजें जो है वो 12 होती हैं, चंद चीजें जो है वो यानी चार, चार भी नंबर बहुत ज्यादा ऑफ रिपेयर नंबर आता है, 40 का नंबर भी बहुत ऑफ रिपेयर यानी बहुत ज्यादा ट्रेडिशन के अंदर मजकूर नजर आता है, और 12 का नंबर भी। बहरहाल तो जो हवारी थे ना, तो उन्होंने जो है वो ईसा अलैहि सलाम के मिशन को जो है वो जारी रखा, लेकिन यहूद जो थे जिन्होंने ईसा अलैहि सलाम को कबूल नहीं किया था, उनके आगे सबमिट नहीं किया था, थे तो वो भी बनी इसराइली के, और ये हवारी भी तो उन्हीं के नस्ल के थे, उन्हीं के खानदान के लोग थे, बनी इसराइली सारा का सारा था ना, लेकिन बनी इसराइल ने बस नहीं मानने की ठानी हुई थी, नहीं मानने की, है ना, कभी वो कोई बहाना बनाते थे, कभी वो कोई बहाना बनाते थे। नबी अलैहिस्सलाम को ना मानने का क्या बहाना बनाया कि जी ये तो बनी इस्माइल में से हैं, ये बनी इसराइल में से नहीं है, इस वजह से हम इन्हें नहीं मानेंगे, ठीक है ना, ये तो बनी इस्माइल में से हैं, इनको तो हमारी नस्ल में से आना चाहिए था, तब हम इनको मानते। लेकिन भाई ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ से थे, यहया अलैहिस्सलाम कहाँ से थे, जकरिया अलैहिस्सलाम कहाँ से थे, वो भी तो बनी इसराइल ही के थे ना, तो भाई अगर तुम्हें बनी इसराइल वालों की मानने की इतनी इतना शौक पड़ा हुआ था तो उनको क्यों नहीं माना, है ना, या उनको अगर माना भी तो उनकी क्यों नहीं मानी, जैसे जकरिया अलैहिस्सलाम को तो उन्होंने माना लेकिन उनकी नहीं मानी, कत्ल कर दिया जकरिया अलैहिस्सलाम को इन्हीं यहूदियों ने। यहया अलैहिस्सलाम को, जकरिया अलैहिस्सलाम जिनको ये अपना रसूल मानते थे, उनके बेटे थे यहया अलैहिस्सलाम, है ना, तो यहया अलैहिस्सलाम को भी माना लेकिन उनकी नहीं मानी, उनको माना उनकी नहीं मानी, ठीक है ना, और ईसा अलैहिस्सलाम को तो सिरे से मानने से इनकार कर दिया, है ना, सवाए चंद हवारियों के। तो बहरहाल जब ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया गया तो हवारियों ने अपना काम जारी रखा, लेकिन यहूद जो है ना वो उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा, और उन्होंने जो है ना वो रोमन एम्परर को जो है वो साथ मिला करके, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश करी थी, उसी तरह हवारियों के पीछे पड़ गए। इन हवारियों ने जो है वो बाकायदा जिहाद किया, ठीक है, यानी कताल किया, बल्कि जिहाद नहीं कताल किया बाकायदा इन यहूदियों से और इन रोमन से, लेकिन बुरी तरीके से इनको शिकस्त हुई, क्योंकि ये देवर आउट नंबर्ड, और अल्लाह ताला की मशीयत नहीं थी कि इन लोगों को जो है वो फतह मिलनी है, ठीक है ना, तो इनको शिकस्त हो गई। तो यानी ये चलता रहा कुछ अरसे तक, हत्ता कि ये लोग बिल्कुल यानी इस काबिल नहीं रहे कि किसी किस्म की फिजिकल रेजिस्टेंस को जो है ना वो पुट अप कर सकें, ठीक है, तो फिर इन लोगों ने अपने दीन की आफियत इसी में समझी कि रहबानियत इख्तियार की जाए, बिल्कुल जो है ना वो यानी हट कट करके गारों के अंदर और जंगलों के अंदर निकल करके ना, वहां पे बस अपने इबादत खाने बना करके वहां पे जो है ना बस रहना सहना शुरू कर दिया, वहीं पे इबादत करनी शुरू कर दी, ठीक है ना। कुरान मजीद इसको बिदअत कहता है, वह रहबानियत निबतदउहा, ठीक है, अल्लाह ताला ने इनके ऊपर जो है ना रहबानियत कोई फर्ज नहीं करी थी, इन्होंने इसकी इसको ईजाद कर लिया, ठीक है ना, लेकिन ये उनके वक्त की जरूरत भी थी, तो ऐसा नहीं है कि ये जो बिदअत स्टार्ट इन लोगों ने करी थी तो अब इस बिदअत को स्टार्ट करने वाले जहन्नुमी हो गए, भाई वे वक्त की जरूरत थी, इसी वजह से इन मॉन्क्स के अंदर ही जो थे ना वो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि मुसलमानों से मोहब्बत करने वाले थे, ठीक है ना, और इन लोगों ने जो है वो फिर दीन इस्लाम का साथ भी दिया है, जैसे कि सूरह बुरूज, सूरह बुरूज की जो तफसीर है उसके अंदर वो आमिर रजी अल्लाह ताला अन जो वो जो नौजवान लड़के थे जिन्होंने जो है वो यानी उस एक राहिब से ही सीखा था ना सब कुछ, तो वो राहिब क्या था, वो मुसलमान राहिब था, हालांकि वो राहिब था, मतलब ये नहीं कि वो बिदती था जैसे वो मजारों वाला था और जो है वो चादर चढ़ाने वाला था और जो है वो यानी जो हमारे जमाने की बिदती है, नहीं, उसका जिक्र तो बहुत अच्छे अहसन तरीके से आया है उस बंदे का, वो तो यानी डटा हुआ था दीन के ऊपर, हाँ छुप करके अपनी इबादत करता था, और उसने अब्दुल्ला बिन तामिर जज़ाकअल्लाह, ठीक है, तो छुप करके इबादत करता था और अपने दीन को संभाल के रखा हुआ था, और जो उसके पास सीखने के लिए आता था उसको सिखा देता था, अब्दुल्ला बिन तामिर को उसने सिखा दिया दीन, इबादत का तरीका सिखा दिया, ठीक है ना, तो ये जो राहिब थे ना, तो इस वजह से इन राहिबों की मखसूस इबादत गाहों की भी बड़ी इज्जत के साथ इनका जिक्र किया गया है, इज्जत के साथ इनका जिक्र किया गया है कि ये जो सवामिया होते थे ना नसारा के, तारिकुद्दुनिया राहिबों की मखसूस इबादत गाह, ठीक ठीक है, तो अगर जो है वो जिहाद ना होता तो इनको भी ढा दिया जाता, ठीक है। बहरहाल तो बियाउ जो है वो बिया की जमा है जो नसारा के आम कनीसों का नाम है, जिनको गिरजाघर भी कहते हैं और चर्चेस भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर। और सलावातुन जो है वो सलूतुन की जमा है, जो यहूद के इबादत खाने का नाम है, जिसको अंग्रेजी में सिनेगॉग्स कहते हैं। और मसाजिद मुसलमानों की इबादत गाहों का नाम है, ठीक है। मतलब आयत का ये है कि अगर कुफार से कताल व जिहाद के अहकाम ना आते तो किसी जमाने में किसी मजहब व मिल्लत के लिए अमन की जगह ना होती, ठीक है। क्या मतलब कि ये जो क्या कहते हैं इबादत खाने हैं ना, इन इबादत खानों के अंदर क्या होता है, इबादत होती है अल्लाह की, इबादत है ना, नमाजें होती हैं, और जो है वो जो जो आसमानी किताब होती है उस आसमानी किताब को पढ़ा जाता है, तिलावत की जाती है ना, और अल्लाह का जिक्र किया जाता है, तस्बीह वगैरह पढ़ी जाती है, या मुराकबे वगैरह किए जाते हैं, और क्या किया जाता है, और बाकायदा किताब की तालीम भी हो सकती है ना, किताब की तालीम भी मस्जिद के अंदर जो है वो हो सकती है। मस्जिद इज अ गुड प्लेस फॉर मदरसा एज वेल, ठीक है। लेकिन अगर फिजिकल स्ट्रगल नहीं की जा रही, किताल नहीं किया जा रहा, ठीक है, काफिरों से, तो क्या होगा कि इतनी नेक कामों के करने वाली जगह, ठीक है, दीन के हिफाजत वाला मुकाम, जैसे मदरसा, खानका जिक्र वाला मुकाम, मदरसा इल्म पढ़ने पढ़ाने वाला मुकाम, ठीक है, और जो है वो अल्लाह ताला का जिक्र करना, जो कि अफजल यानी इबादत है अल्लाह ताला का जिक्र है ना, इसकी भी हिफाजत के लिए फिजिकल एफर्ट भी करनी पड़ती है, फिजिकल एफर्ट भी करनी पड़ती है। ये नहीं कि बस जिक्र करे चले जा रहे हैं और हिफाजत हो ही चली जा रही है, और जिक्र करे जा रहे हैं हिफाजत हिफाजत हो ही चली जा रही है, मदरसा बनाए चले जा रहे हैं और मदरसे के अंदर पढ़े पढ़ते और पढ़ाए चले जा रहे हैं, तो बस ये हिफाजत का सबब बन गया, मदरसा में पढ़ना पढ़ाना हिफाजत का सबब बन गया, ठीक है ना, जो क्या कहते हैं खानकाह के अंदर जिक्र करना कराना जो है वो हिफाजत का सबब बन गया। नहीं, ये जो काम है, हर काम बहुत जरूरी काम है, हर काम जो है वो उसकी अपनी जगह पर अपनी एक अहमियत है, लेकिन जो किताल की अहमियत है, ठीक है ना, फिजिकल, जिसको जिहाद का लफ्ज उमूमी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए, ठीक है, तो वो इन सब कामों की हिफाजत के लिए उस चीज की भी जरूरत है। अगर वो वाला काम नहीं होगा तो फिर ये आज हैं कल नहीं रहेंगे, कल हैं तो परसों नहीं रहेंगे, खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। अब जिहाद के अंदर जो तफसील है कि भाई कब जिहाद, कैसे जिहाद, जिहाद के दर्जे होते हैं, जिहाद में पहला स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा स्टेप क्या होता है, ये सारी एक अलग तफसील है, लेकिन प्रिंसिपली स्पीकिंग इस बात को मानना लाजिम है कि मदारिस, खानकाहें, ठीक है, और जिक्र की जो मेहनतें हैं, ठीक है ना, खानकाह से मुराद अगर हम तज़किए वो वाला ले लें भाई, तज़किए नफ्स वाली जगह ले लें, ठीक है ना, और जिक्र की मेहनत को हमने एक अलग शोबा अगर बना दिया, वरना खानकाह के अंदर जिक्र भी होता है और तज़किए नफ्स की मेहनत भी होती है वगैरह, सब कुछ होता है उसके अंदर, ठीक है। तो बहरहाल ये दूसरी जितनी मेहनतें हैं ना दीन की, इन दूसरी मेहनतों की हिफाजत जो है वो इस तीसरी मेहनत के जरिए से होती है, ठीक है। तो फरमाया कि अगर कुफार से कताल और जिहाद के अहकामात ना आते तो किसी जमाने में किसी मजहब व मिल्लत के लिए अमन की जगह नहीं होती। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में सलावात, और ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में सवामे, और बेउ, और खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मस्जिदें ढा दी जाती, ठीक है, ढाई गई, ठीक है, लेकिन जिहाद के जरिए से फिर उसको रिकवर भी कर लिया गया, ठीक है। और जिहाद का जो एक एक मुसलमानों के दरमियान एक जो चीज मौजूद थी ना, कि जी इनके पास एक फिजिकल पावर है, तो उसकी एक हैबत भी होती थी काफिरों के ऊपर, उसका एक खौफ भी होता था कि जिसकी वजह से, जिसको कहते हैं प्रियम्प्टिव, प्रियम्प्टिव यानी अटैक करने से पहले ही जो है ना वो ऐसे मामलात कर लिए कि दुश्मन की हिम्मत नहीं हुई हरकत करने की, आपके इबादत खानों को आकर के जो है वो गिरा देने की, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम गिराएंगे तो आगे से उन्होंने काउंटर एक्शन करना है और हमारी फिर ईंट से ईंट बजा देनी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है वो काफिर जो है वो पीछे भी रहते हैं, और अगर किसी भी रीजन से काफिर उन्होंने अगर अटैक कर भी दिया और किसी मस्जिद को अगर गिरा भी दिया और किसी जगह पर अगर ऐसा मामला कर भी दिया, तो मुसलमानों ने फिर वापस इनसे टेक ओवर कर लेना है, ले लेना है उस चीज को, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर ये है कि जी आज आज के ऊपर बहुत सारे लोग अपनी कम इल्मी और बहुत ही महदूद जो है ना वो अकल, और ना उनके पास कुरान का इल्म है, ना उनके पास हदीस का इल्म है, ना उनके पास तारीख का इल्म है, ना उनके पास जो है वो किसी किस्म की और तरबियत है, तो वो जो है ना वो फौरन इन बातों को सुन करके जो है ना, या कहीं पढ़ लिया उन्होंने या कहीं उन्होंने सुन लिया, फौरन जो है ना वो आज के जो उलमाए कराम हैं और आज के जो मुफ्तियाने हजरात हैं और आज के जो 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 उलमा जो है वो इकामत दीन का काम कर रहे हैं या पार्लियामेंट के अंदर जो मौजूद है, फौरन उनके ऊपर जो है ना वो तनकीद, फौरन उनके ऊपर जो है ना फिंगर पॉइंटिंग। अच्छा, यही तो हम भी कहते हैं, यही तो हम भी कहते हैं कि जी अगर जिहाद नहीं किया जाएगा ना तो मदारस भी नहीं चल सकेंगे और ये भी चल सकेंगे, तो फिर ये करते क्यों नहीं है, ये करते क्यों नहीं है आज वाले जो है ना उनके ऊपर फौरन, करते क्यों नहीं है, करते क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं करते, और ये जो है वो क्या कर रहे हैं, और ये जो है वो जुल्म के खिलाफ क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं, और ये जो है वो जालिम का साथ क्यों दे रहे हैं, और ये मजलूम का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं, और फौरन जो है ना ये शुरू हो जाता है, एक राग राग अलापना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उनको एक तो सिंपल सा सादा सा जवाब यही है कि भाई आप जो है ना वो जरा सा यानी टेक अ चिल पिल, अमेरिका में कहते हैं टेक अ चिल पिल है ना, चिल की जो है ना वो गोली खाओ जरा, जिससे तुम्हें जो है वो इत्मीनान आ जाए थोड़ा सा, है ना, ये जो तुम एक बेइत्मीनानी के शिकार हो, ठीक है, जरा तहम्मुल से, सुकून से, ठीक है ना, बैठ के जरा बात करो, सुनो, तफसील से समझो, हम तुम्हें समझाएंगे कि अभी क्यों नहीं कर रहे, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि भाई लॉन्ग टर्म भी तो है ना, एक तो शॉर्ट टर्म है कि अभी बैठो के बात करेंगे, हम तुम्हें समझाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है, और एक लॉन्ग टर्म इसका हल ये है कि भाई आप अपने इल्म को जरा वसी करें ना, आप अपनी समझ को जरा वसी करें ना, क्या आप जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर हर वक्त जो है वो इधर सुन लिया उधर सुन लिया, ये कर लिया वो कर लिया वो कर लिया, और जो प्रॉपर तरीके से अपनी समझ को वसी करने का तरीका होता है, इल्म हासिल करने का तरीका होता है, उसके लिए जो है वो आपने कोई टाइम ही नहीं फारिग छोड़ा, उसके लिए टाइम ही नहीं निकाला आपने, तो आपको फिर ये बातें कैसे समझ में आएंगी कि आज के जो उलमा हैं वो अगर इस वक्त एकदम ये वाला क्या इसके लिए खास लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, इस किस्म की जो है ना वो जिहाद क्यों नहीं कर रहे, उसकी वजूहात हैं, और ये वजूहात बिल्कुल शरीयत से साबित हैं, ठीक है ना, कि तलवार उठा करके जो है वो क्यों नहीं कर रहे, और फिर हम भी अपनी क्लासेस के अंदर इसके ऊपर बड़ी तफसील से पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। तो बहरहाल अगर किसी को सवाल पूछना हो तो पूछेंगे, तो फिर हम शायद इस क्लास में भी उसको बात कर लें। अभी हम आगे पढ़ना शुरू कर रहे हैं कि खुलफाए राशिदीन के हक में कुरान की पेशिन गोई और उसका ज़हूर, ठीक है, चार खुलफा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो फरमाते हैं कि अल्लज़ीना इम्मकन्नाहुम फिल अर्द, ठीक है, वो लोग जो अगर हम उनको जमीन में मकान दें, मकान कौन सी जगह होती है, जहां पर इंसान के पैर स्टैब्लिश्ड होते हैं, जहां पर उसके पैर जमे हुए होते हैं, मक्कन्ना मकान दें हम उसको, ठीक है, तो इसकी इसका लफ्जी तर्जुमा क्या है, मकान दें, और इसका मफहूम क्या है, इसकी तशरीह क्या है, कि इनके पैर जमा दें, उनको अथॉरिटी दे दें, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ है ना, अगर लफ्जी मानी को तशरी के साथ आप इसकी तदबीक करें, इसको कोरिलेट करें, तो क्या मतलब हुआ, चले आप बता दें ताकि कुछ आपकी भी पार्टिसिपेशन हो और पता भी लगे कि आपको कितना आप फॉलो कर पा रहे हैं, ठीक है। लफ्जी मानी मक्कन्ना और तशरी, इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशनशिप होनी चाहिए ना, वरना खाली ऐसी तो नहीं होता अनरिलेटेड जो है वो आप किसी लफ्ज को किसी मफहूम के लिए इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह, इन्होंने तो बड़ा जबरदस्त सवाल कर लिया कि आपकी तफसीर की क्लास का टाइमिंग कब है और ये कौन से सूरह की तफसीर है, कौन से सूरह की तफसीर है, वो तो है सूरह अल हज, और टाइम क्या है वो तो आपको अपनी घड़ी में देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको, हमें नहीं पता आप कौन से मुल्क में है, ठीक है ना, तो आपके मुल्क में जो इस वक्त टाइम हो रहा है ना, तो वही इस तफसीर की क्लास का टाइम है, और ये रोजाना होती है रमजान और बारक के महीने में, ठीक है। टू मेक देम लीडर्स, अगर उनको अथॉरिटी दे दें, नहीं, मैं आपसे इन मक्कन नाहुम का की रिलेशनशिप वगैरह नहीं पूछ रहा, मैं ये आज आपसे पूछ रहा है कि मक्कन्ना का मतलब है कि हम उनको मकान दे दें, ठीक है, मक्कन्ना का तर्जुमा क्या है कि हमने उन, यानी मकान दे देना, मकान दे देना, ठीक है, ये इसका तर्जुमा है। और इसकी तशरी क्या है, इसकी तशरी ये है कि हम उनके कदम जमा दें, ठीक है, हम उनके कदम जमा दें, हम उनको अथॉरिटी दे दें, तशरी ये है, और तर्जुमा क्या है, हम उनको मकान दे दें। बात समझिए, दोनों में बजाय फर्क नजर आ रहे ना, मकान दे देना ये तर्जुमा है और अथॉरिटी दे देना ये तशरी है, ठीक है। तो अब इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, अथॉरिटी दे देने में और मकान दे देने में, मकान से निकला है, जगह देना मतलब इख्तियार देना, तशरी है इख्तियार देना। मैं आपसे तशरी नहीं पूछ रहा भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ तशरी में और तर्जुमे के दरमियान तत्बीक करें, कोरिलेट करें, ज्वाइन करें इन दोनों को, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। जिहाद और कतान में क्या फर्क है, जिहाद जनरल सेंस में आता है जिसके अंदर अपने नफ्स के ख्वाहिशात के खिलाफ मुजाहिदा करना, ये भी शामिल है, लेकिन कताल जो है ना वो बाकायदा असलहे के साथ, एम्यूनेशन के साथ दुश्मन से लड़ाई करना, वो कताल कहलाता है, ठीक है। ये कताल जो है ना वो आप अपने नफ्स के खिलाफ नहीं कर सकते, ठीक है ना, अगर आपने नफ्स के खिलाफ कताल कर लिया तो फिर क्या होगा, फिर खुदकुशी हो जाएगी और फिर जहन्नुम में हमेशा हमेशा के लिए जलना पड़ेगा। तो नफ्स के खिलाफ आप कताल नहीं कर सकते, लेकिन नफ्स के खिलाफ आप जिहाद कर सकते हैं और करना जरूरी है, ठीक है। तो जिहाद और कताल में ये फर्क है जी। वंस समवन हैज अ बेस मकन, देन दैट पर्सन इज एबल टू डू अदर थिंग्स, जिसका मकान होता है उसका उसमें इख्तियार भी होता है। अब आपके पास समझ में आई माशाल्लाह, ठीक है, कि भाई मकान जो है ना, मकान का मतलब क्या है कि आपके पास इख्तियार है उसके अंदर, है ना, लेकिन अगर आपके पास मकान तो है, यानी जिसको कहते हैं ना वो दरो दीवार तो है आपके पास, ठीक है, आपके पास दरो दीवार तो है लेकिन आपका इख्तियार है ही नहीं उसके अंदर, है ना, इख्तियार तो यानी पड़ोसी का चलता है उसके अंदर, या इख्तियार जो है ना वो तो किसी ससुराली रिश्तेदार का चलता है, ठीक है ना। तो ये जो मकान है ना, ये सिर्फ दरो दीवार है, ये सिर्फ दरो दीवार है, ये मकान नहीं है, ये मकान कहलाने के काबिल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इख्तियार तो किसी और का चल रहा होता है, ठीक है। तो ये दोनों दोनों चीजों के दरमियान तफ़वीक है, ठीक है, ये असल में याद इसके आना चाह रहा था आपको, क्योंकि मकान में इंसान ऑथोराइज्ड होता है, जो चाहे कर सकता है, कोई क्वेश्चन नहीं करता जी, ठीक है ना। मतलब मकान का फायदा ही उस वक्त है, मकान मकान कहलाने के काबिल उस वक्त होता है जब उसके अंदर उसका इख्तियार चलता है, अगर उसका इख्तियार ही नहीं चल रहा मकान के अंदर, तो फिर वो मकान जो है ना वो बस दरो दीवार है, ठीक है ना, वो मकान नहीं है। और आपने क्या लिखा कि जिस तरह मकान में इंसान की अपनी मर्जी के मुताबिक रह सकता है, उसी तरह लीडर की अथॉरिटी होती है, जिसका मकान होता उसके पास अथॉरिटी होती है जी। तो दोनों के दरमियान ये तफ़वीक हो गई कि जिसका मकान होता है उसका उसमें इख्तियार भी होता है, या उसका होना चाहिए, अगर नहीं है देन देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। इसलिए घर वाली को ज्यादा इख्तियार होता घर के मामलात में, जो घर वाली होती है तो उसको इख्तियार होता घर के मामलात में, लेकिन उसके ऊपर वाली जो अथॉरिटी है वो भी घर वाला है भाई, शौहर जो है वो ये नहीं है कि वो बाहर वाला है, है ना, ये शौहर, ठीक है, घर औरत के लिए घरवाली का लफ्ज बेशक इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, लेकिन शौहर के लिए सड़क वाले का लफ्ज इस्तेमाल तो नहीं किया जाता ना, कि शौहर साहब जो हैं ये तो दफ्तर वाले हैं, शौहर साहब जो हैं ये तो दुकान वाले हैं, शौहर साहब जो हैं जो कि ये तो सड़क वाले हैं, है ना भाई, वो भी तो घर वाले हैं ना। और इन दोनों घर वाले और घरवाली के दरमियान हु कम्स फर्स्ट एंड हु कम्स लेटर, है ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से है ना, खालिक और मालिक का फैसला कि हु कम्स फर्स्ट एंड हु कम्स लेटर, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला की तरफ से गिवन अथॉरिटी के मुताबिक शौहर जो है ना वो ऊपर उसका इख्तियार, और फिर उसके विद इन जो है वो औरत का इख्तियार, ठीक है जी। अल्लाह ताला का बनाए हुए निज़ाम है, बाकी जाहिर है अल्लाह के दुश्मन जो होते हैं उनका बनाए हुए निज़ाम अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम के खिलाफ ही होता है, जबकि तो वो अल्लाह के दुश्मन कहलाते हैं, ठीक है। चले तो अल्लज़ीना इमकन्नाहुम फिल अर्द, इस आयत में अल्लज़ीना सिफत है उन लोगों की, यानी अल्लज़ीना के बाद जो जो सिफत बयान की जा रही है ना, अल्लज़ीना तो इसे मौसूला है, इसे मौसूला का तर्जुमा कैसे करते हैं, वो लोग जो, ठीक है ना, वो लोग जो, तो जो के बाद जो आएगा वो सिफत होगी, ठीक है। अल्लज़ीना का लफ्ज इटसेल्फ जो है वो सिफत नहीं है, लेकिन अल्लज़ीना सिफत को बयान करता है, डिस्क्रिप्शन देता है, ठीक है। तो वो किसकी डिस्क्रिप्शन दे रहा है, उन लोगों की के जिनका जिक्र इससे पहले आयत में इन अल्फाज से आया है, अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम बगैर हक, ठीक है, यानी वो लोग कि जिनको उनके घरों से जुल्मन बगैर किसी हक के निकाल दिया गया था, ठीक है। अगर किसी को एंटर होने में प्रॉब्लम आपके में आ रही हो, क्योंकि विमेंस लिंक जो है वो भर गया है, तो मर्दों की तरफ जो लिंक है वो उसमें काफी कैपेसिटी है, तो उधर आ सकते हैं। ये आज मैंने मिक्सल आर्ट सेशन स्टार्ट नहीं किया है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा अच्छा यानी वो लोग जिनको उनके घरों से जुल्मन बगैर किसी हक के निकाल दिया गया, उन लोगों के बारे में इस आयत में फरमाया गया है कि ये ऐसे लोग हैं कि अगर उनको जमीन में हुकूमत व इख्तदार दे दिया जाए तो ये लोग अपने इख्तदार को इन कामों में सर्फ करेंगे, उन कामों में सर्फ करेंगे कि नमाजें कायम करें और जक़ात अदा करें और नेक कामों की तरफ लोगों को दावत दें, बुरे कामों से रोकें, ठीक है। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, हालांकि नमाज की तरफ बुलाना ये भी अमर बिल मारूफ है, राइट। जकात की तरफ बुलाना कि कोई अगर जकात नहीं दे रहा तो अब आप उसको कह रहे हैं कि आप जकात दे दिया करें, तो ये भी तो अमर बिल मारूफ है, लेकिन अलग से क्यों बयान किया, क्योंकि ये एक आम मुहावरा है, यानी आम बोलचाल का अंदाज है, आम तरीका है बात करने का, जो कि कुरान मजीद में भी है, हदीस मुबारक में भी है, और इवन इंसानों के कलाम के अंदर भी है, कि जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बात होती है ना, तो अगरचे के वो उमूम के अंदर शामिल है, लेकिन उसको अलग से भी खास करके भी बयान कर दिया जाता है, ठीक है। तो नमाज जो है ये अमर बिल मारूफ के अंदर नमाज का हुक्म करना शामिल है, लेकिन चूंकि नमाज इतनी अहम इबादत है, ठीक है, कि 700 से ज्यादा मरतबा नमाज और जकात का हुक्म दोनों बल्कि, है ना, तो इस वजह से इनको अलग से भी बयान कर दिया, ठीक है, कि नमाज कायम करें। और ये किसने बयान किया, मुफ्ती शफी ने नहीं, अल्लाह ताला ने बयान किया, अल्लाह ताला का कलाम है ना कि जी अकाम सलाता व आतु ज़कात, ठीक है, व अमरु बिल मारूफ व नहु अनिल मुनकर, है ना, तो अल्लाह ताला का अंदाज बयान भी यही है। तो ये ऊपर मालूम हो चुका है कि ये अंदाज, एक मिनट है, आपका मैसेज आया हुआ है, चलिए पढ़ लेते हैं पहले। इन दिनों इंडिया में कभी लव जिहाद तो कभी लैंड जिहाद एक्सेट्रा बोलकर डिबेट्स चल रही हैं, क्या इस्लाम में इसकी कोई डेफिनेशन है, रहनुमाई फरमाइए। लव जिहाद क्या पता, इंडिया में जो डेफिनेशन है वो तो पहले बताया ना कि इंडिया में क्या डेफिनेशन है इसकी, लव जिहाद और लैंड जिहाद, ठीक है। तो इस्लाम में तो जाहिर है ऐसा कोई अलग से लव जिहाद और लैंड जिहाद नहीं होता, लेकिन इंडिया में क्या है वो, लव जिहाद का तो शायद मैंने सुना है, लैंड जिहाद का लव मैंने पहली दफा सुना है बाय द वे। तो वो लव जिहाद क्या था कि पहले तो मुसलमानों की तरफ मंसूब किया जाता था ना कि हिंदू लड़कियों को जो है ना वो मुसलमान लड़के उनसे शादी कर लें और उनको मुसलमान बना लें, तो तो ये जो है वो लव जिहाद कहलाता था। अब जो है वो रिटेलिएशन में हिंदुओं ने लव जिहाद शुरू किया, गालिबन अब ऐसे ही हो रहे हैं कि उन्होंने मुसलमान लड़कियों को जो है वो हिंदू बना करके, या कम अज कम इस्लाम से जो है वो निकाल करके, चाहे हिंदू बने या ना बने लेकिन इस्लाम से तो कम अज कम निकल जाएंगी, उनसे शादी करके जो है वो फिर उसके बाद जो है वो पैसे कमाने का एक रास्ता अपना लिया। ठीक है, तो इसको जो है वो इंडिया में लव जिहाद कहते हैं, जहां तक मुझे मुझे इल्म है। तो भाई ऑफ कोर्स यार, मतलब इसका क्या ताल्लुक है कुरान मजीद वाले जिहाद से। ठीक है, अच्छा, तो फरमाते हैं कि ये ऊपर मालूम हो चुका है कि ये आयात हिजरत मदीना के फौरन बाद उस वक्त नाजिल हुई हैं जबकि मुसलमानों को किसी भी जमीन में हुकूमत व इख्तदार हासिल नहीं था, मगर हक तआला ने उनके बारे में पहले ही ये खबर दे दी कि जब उनको इख्तदार हुकूमत मिलेगा तो ये दीन की मस्कूरा अहम खिदमात अंजाम देंगे। ठीक है, जब उनको मिलेगा, यानी अभी तो बेचारे लुटे पुटे मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे ही थे, और ना घर का पता, ना खाने का पता, ना पीने का पता, है ना। तो इस हालत में अल्लाह ताला ये आयत नाजिल फरमा रहे हैं। ठीक है ना, कि वो उनको हुकूमत मिलेगी और वो ये करेंगे और वो करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि सना उन कबला बना इन। ठीक है, यानी अल्लाह ताला की ये इरशाद का, ये इरशाद अमल के वजूद में आने से पहले उसके अमल करने वालों की मदह व सना है। ठीक है, यानी अल्लाह ताला इससे पहले के इन लोगों को आजमाते हुकूमत दे करके, आजमाने से पहले ही जो है ना वो उनको एकोलेड्स, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, गोल्ड मेडल, राइट, नंबर वन पोजीशन, पास, मकबूल, जय्यद जिद्दन, कल जो है वो इफाक का माशाल्लाह रिजल्ट भी आया है, तो कोई जय्यद आया, तो कोई जय्यद जिद्दन आया, तो कोई माशाल्लाह मुमताज आया, है ना, और कोई जो है वो कबूल हो गया, मकबूल आ गया। ठीक है, माशाल्लाह हमारे सारे जो तालिबे इल्म वफाक में गए थे, ठीक है, तो सभी जो है वो माशाल्लाह पास हो गए। ठीक है, तो जब उन्होंने इम्तिहान दिया, मुबतला किए गए इम्तिहान वाली आजमाइश में, फिर उसके बाद जो है ना उनका रिजल्ट आया, तब उनको ये ग्रेड्स मिले, किसी को मुमताज मिला, किसी को जय्यद जिद्दन मिला। ठीक है ना, यानी वेरी गुड और एक्सेलेंट वगैरह, जो स्कूलों के अंदर तो हम जाहिर ये वाली टर्म्स इस्तेमाल नहीं करते ना, तो हमने तो गोरे साहब वाली टर्म्स इस्तेमाल करनी है। तो अगर कोई उस्ताद साहब जो है, या विफाकुल मदारिस है ना, मदारिस का जो बोर्ड है, वो किसी को इम्तिहान में बैठने से पहले ही कहेगी भी तुम तो मुमताज हो, तुम तो जय्यद जिद्दन हो, है ना, क्या मतलब इसका, उस्ताद साहब को अपने शागिर्द के ऊपर कितना एतमाद है ना, उस्ताद साहब को अपने शागिर्द के ऊपर कितना एतमाद है। कैसे एतमाद होता है उस्ताद को शागिर्द के ऊपर, है ना, कि भाई जिस जमाने में क्लासेस चल रही थी, जिस जमाने में क्लासेस चल रही थी, और मॉक एग्जाम्स, छोटे मोटे मॉक एग्जाम्स होते हैं, क्विजेज होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, ये जो तालिब इल्म था ये उनके अंदर इतना अच्छा परफॉर्म करता था, इतना अच्छा परफॉर्म करता था कि फाइनल एग्जाम में बैठने से पहले ही उस्ताद साहब ने कह दिया तुम तो मुमताज हो, यू आर एन एक्सेलेंट स्टूडेंट, तुम्हें तो मैं पहले से 100 out of 100 देता हूं। ठीक है, अब यहां पर सुभान अल्लाह, किसने ये एक्सेलेंट दिया, है ना, सना उन किसकी तरफ से ये सना हो रही है और किसके लिए ये सना हो रही है, सहाबा कराम के लिए। नबी के लिए तो हो ही रही है, लेकिन नबी ने अकेले को थोड़ी ये सारे काम करने थे, ठीक है ना, सहाबा कराम के साथ मिलके नबी अलैहिस्सलाम ने सारे काम किए ना, तो क्या बात है सहाबा की, क्या बात है सहाबा की, कैसा एतमाद उन्होंने हासिल किया, कैसा एतमाद जो है ना उन्होंने कमाया अपने बड़ों का। ठीक है, कि उनके बड़े जो है वो सना उन कबला बलाइन, इससे पहले कि वो फाइनल एग्जाम में बैठते, उससे पहले ही उनको जो है ना वो माशाल्लाह। ठीक है, तो फरमाते हैं कि फिर अल्लाह ताला की इस खबर का, जिसका वुकू यकीनी था, इस दुनिया में वुकू इस तरह हुआ कि चारों खुलफाए राशिदीन और मुहाजरीन उखरजू के मिसदाके सही थे, फिर अल्लाह ताला ने उन्हीं को सबसे पहले जमीन की मकानत व कुदरत, या मस्कनत, मस्कनत तो खैर नहीं, मकन्नत होगा, मकानत व कुदरत यानी हुकूमतो सल्तनत अता फरमाई। और कुरान की पेशन गोई के मुताबिक उनके आमालो किरदार और कारनामों ने दुनिया को दिखला दिया कि उन्होंने अपने इख्तदार को इसी काम में इस्तेमाल किया कि नमाजें कायम की, जक़ात का निजाम मजबूत किया, अच्छे कामों के रिवाज व रिवाज दिया और बुरे कामों का रास्ता बंद किया। ठीक है भाई, अल्लाह ताला के इल्म में तो सब कुछ है, फ्यूचर में क्या होना था क्या नहीं होना था अल्लाह ताला के तो इल्म में है, लेकिन क्या अल्लाह ताला अपना इल्म जो है वो अपने कुरान के अंदर बयान भी कर देते हैं? है ना, कुरान के अंदर बयान तो सारा फ्यूचर का इल्म नहीं करते ना। हाँ थोड़ी बहुत याजूज माजूज आएंगे भाई, है ना, ये अल्लाह ताला ने फ्यूचर का बयान कर दिया, कयामत के अंदर क्या क्या कुछ होगा ये अल्लाह ताला ने बयान कर दिया, ठीक है ना, लेकिन इंसानों के आगे के आमाल तो बयान नहीं किए ना, जो कि सामने के इंसान थे उनके बारे में, अभी तुम ये करोगे तुम ये करोगे तुम ये करोगे, ऐसा तो कुरान मजीद में नहीं किया ना। लेकिन सहाबाए कराम ऐसे एक्सेप्शनल लोग थे कि अल्लाह ताला ने सहाबाए कराम का बाकायदा अपने इल्म अजली में से ले करके अपने कुरान मजीद में उनका जिक्र भी कर दिया कि ये ऐसा करेंगे। ठीक है, तो इससे शान सहाबा कितनी वाजे होती है, कितनी जबरदस्त शान है वो सहाबा कुरान मजीद से। वैसे तो कुरान मजीद में शान सहाबा जगह जगह मौजूद है, लेकिन दिस इज वन ऑफ दोस प्लेसेस। ठीक है, इसी वजह से ना कुछ लोग हैं, अल्लाह रहम करे हमारे ऊपर, कि हम उनको सुनते भी हैं और उनके जो है वो बहुत हाँ में हाँ भी मनाना शुरू कर देते हैं, वो अजीब किस्म के, यानी क्या बोले उनको, कहते हैं कि जी मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है ना वो हल्के फुल्के ढीले ढाले किस्म के, नाउज बिल्ला सुम्मा नाउज बिल्ला, वो बहुत ही यानी ऐसे किस्म के मुसलमान थे, है ना। और ये जो जाहिल इंसान है, ठीक है ना, जिसको अपने नाम के साथ इंजीनियर भी लगाता है, क्या कह रहा है, मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो जरा हल्के यानी ढीले किस्म के इंसान मुसलमान थे, यानी जिसको कहते हैं ना लूज किस्म का। ठीक है, अपने जुमले के ऊपर ये गौर नहीं कर रहा कि क्या बक रहा है ये, रजी अल्लाह ताला अन, अल्लाह ताला उनसे राजी हो गया, है ना, ये भी कह रहा है और साथ ये भी कह रहा है कि वो जो है वो नाउज बिल्ला ढीले किस्म के इंसान थे, मुसलमान थे। तो तुम जो है ना वो, यानी अल्लाह ने तो रजा का उनको सर्टिफिकेट दे दिया और तू अपनी जुबान से बोल भी रहा है इस बात को, ठीक है ना, अपनी जुबान से बोल भी रहा है इस बात को कि अल्लाह ताला ने रजा का सर्टिफिकेट दिया है, और तुम जो है ना वो, तुम्हारी अकल अल्लाह से ज्यादा बड़ी अकल है, तुम्हारी जो है ना वो तारीख की जो मुतालिया है और तारीख को जो तुमने समझा है वो अल्लाह ताला से ज्यादा तुमने बात को समझा है, कि तुम जो है वो उनके बारे में इस किस्म की तनकीदी बात कर रहे हो, नहीं कि वो ऐसे नहीं थे वैसे थे, और वैसे नहीं थे ऐसे थे। ठीक है ना, और कितने लोग जो है उसकी YouTube वीडियोस को देख भी रहे हैं और उसकी हाँ में हाँ भी मिला रहे हैं और उसको फॉलो भी कर रहे हैं और उसके प्रोग्राम्स के अंदर भी जा रहे हैं, यानी कैसे हो गया ये सब कुछ, एक लंबा हमारे साथ खेल खेला है जिसके अंदर हम खुद, यानी लोगों ने तो, काफिरों ने तो हमारे साथ खेल खेला, लेकिन वी वर यानी कंसेंटेड विक्टम्स ऑल्सो, हम अपनी मर्जी से उस खेल के अंदर जो है ना वो शामिल हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे साथ और हमारी नस्लों के साथ जो है ना वो ये हो गया है कि अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि बोलने वाला बोल क्या रहा है और हम जो है वो तालियां बजा रहे होते हैं फिर भी, है ना। तो अब सहाबा कराम का मामला ऐसा है कि उसके ऊपर जो है वो, यानी लोग जो है वो, यानी अपने जो मुंह में आता है जो उसको बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, चले, आपने क्या लिखा है यहाँ पे, क्या किसी माजूर की व्हीलचेयर उसकी वफात के बाद सदका जारिया में दी जा सकती है? किसी माजूर की व्हीलचेयर उसकी वफात के बाद सदका जारिया में दी जा सकती है अगर ये उसकी प्रॉपर्टी थी, है ना, यानी जिनका इंतकाल हुआ है ये अगर उनकी मिल्कियत में थी, ये उनकी उनके माल से खरीदी गई थी, या जिसने भी खरीदी थी उसने इनको ये हदिया कर दी थी कि भाई अब ये आपकी व्हीलचेयर है, तो ये उनकी मिल्कियत बन गई थी। अब जब इनका इंतकाल हो गया ना तो इनकी व्हीलचेयर को सदका जारिया में नहीं दिया जा सकता, ठीक है ना, इनको सदका नहीं किया जा सकता क्योंकि अब ये व्हीलचेयर जो है इनके वरसा की मिल्कियत बन चुकी है, ठीक है ना, वारिसों की मिल्कियत बन चुकी है। अगर इनके दो बेटे थे ना उन दोनों बेटों में इस व्हील चेयर की वैल्यू आधी आधी डिवाइड हो चुकी है, ठीक है ना। अब या तो दोनों बेटे जो हैं वो बालिग भी हों, और बालिग यानी नाबालिग अगर हैं तो नहीं उनकी मर्जी पूछी जाएगी, बल्कि अगर वो बालिग हैं तो वो दोनों अगर आपस में एग्री करते हैं कि हाँ जी अब्बा अब्बा हुजूर की जो व्हील चेयर है वो हम सदका जारिया में फलाने ट्रस्ट को दे देते हैं, ठीक है वो दे दें, दोनों अपनी मर्जी से दे रहे हैं अपने अपने हिस्से को, 50% उसका हिस्सा था 50% इसका हिस्सा था, ठीक है ना। लेकिन अगर एक बेटा कहता है कि नहीं 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 मैं आई डोंट एग्री विद दिस, है ना, मुझे तो पैसे चाहिए, इस व्हील चेयर को बेचें और इसके जो रकम बनती है ना आधे रकम मुझे चाहिए, मुझे जरूरत है उसकी, तो कोई नहीं दे सकता इसको सदका जारिया जारिया के अंदर। जो देगा उसको सदका जारिया नहीं मिलेगा, उसको गुना जरूर मिलेगा, उसने किसी गैर के पैसे को जो है ना वो अपनी मर्जी से उठा करके किसी गरीब के हवाले कर दिया, उसको कोई सवाब नहीं मिलेगा, उसको गुनाह मिलेगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि इस एक सवाल और इसके जवाब से आपको मीरास का मसला भी समझ में आ गया होगा कि मरने वाले की किसी चीज को उठा के सदका जारिया ऐसे ही नहीं किया जा सकता, जबकि सारे वारिस जो है वो उनकी मर्जी उसमें शामिल ना हो, और वारिस भी कौन, बालिग वारिस, अगर ना बालिग है तो उसकी तो मर्जी भी शामिल नहीं हो सकती, नहीं नाबालिग के बारे में यानी नाबालिग की मर्जी मर्जी नहीं होती, ठीक है। बहरहाल उसके लिए फिर आपको मुफ्ती साहब से रुजू करना होगा कि भाई अगर व्हील चेयर है उसको कुछ कर भी नहीं सकते, और जो है वो वरसा के अंदर जो है वो एक नाबालिग है, तो अब जो है वो क्या करें इसका, ये फिर मुफ्ती साहब के पास जाए, ठीक है ना, ये फिर हमारी जो रिस्ट्रिक्शन में ये बात नहीं है। अच्छा, आगे फरमाते हैं कि इसीलिए उलमा ने फरमाया कि ये आयत इसकी दलील है कि खुलफाए राशिदीन सब के सब इसी बशारत के मिस्ताक हैं, और जो निज़ाम खिलाफत उनके जमाने में कायम हुआ वो हक व सही और ऐन अल्लाह ताला के इरादे और रजा और पेश की खबर के मुताबिक है, ठीक है ना। ये जो रवाफिज हैं जिनको कि आजकल शिया कहा जाता है, जो कहते हैं ना कि जी अबू बकर सिद्दीक रतान की और उमर फारूक रतान की और उस्मान गनी रतान की जो खिलाफत थी ना, नाउज बिल्ला, ये जायज खिलाफत नहीं थी, ये तो अली रज़ी अल्लाह के हक के ऊपर उन्होंने कब्जा जमा करके जो है वो अपनी खिलाफत कायम कर दी थी, वरना तो हक तो अली रज़ी अल्लाह का था, तो ये खिलाफत ही जायज नहीं थी। और जिन जिन लोगों ने खिलाफत में उनका सपोर्ट दिया, उनके हाथ पे बैत करी, उन सारों ने जो है ना वो गुनाह का काम किया, और बल्कि गुनाह नहीं कुफर का काम किया, वो सारे के सारे मुर्तद हो गए। इसी वजह से ये जब सहाबा का नाम लेते हैं ना तो इनके दिल में नीयत क्या होती है, चार सहाबा, चार सहाबा, जब ये सहाबा कहना है यानी सहाबा तो मकबूल हैं और सहाबा तो बड़े हैं और सहाबा तो ऐसे हैं और सहाबा, अगर ये सहाबा की तारीफ भी करते हैं ना, यू नीड टू आस्क देम व्हाट डू यू मीन बाय सहाबा, हु डू यू मीन बाय सहाबा, डू यू मीन अबू बकर सिद्दीक रतान, आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा, उमर फारूक रतान, और यू जस्ट मीन फोर सहाबा, ये तो बताओ ना जरा, ठीक है ना, तब पता चलेगा ये क्या क्या कहना चाह रहे हैं ये। या तो 100 की तकिया कर लेंगे, तकिया करने का मतलब होता है झूठ बोलना, और जो है ना वो दिल में जो है ना वो नीयत कुछ और कर लेना, और जो है वो यानी अब किसी मसलियत के खातिर झूठ बोल देना, इसको कहते हैं तकिया करना, ठीक है। तो देखें कुरान मजीद जो है ना उससे तो सहाबा इस्टेब्लिश्ड हैं सारे के सारे सहाबा, ठीक है, और अबू बकर सिद्दीक रतान का तो यानी स्पेसिफिक जिक्र भी मौजूद है, ठीक है, कुरान मजीद के अंदर एक्सप्लिसिट जिक्र, नाम लेकर के नहीं है, लेकिन ऐसा वाकया और ऐसे वाकयात के जो कि सिर्फ और सिर्फ अबू बकर सिद्दीक रतान के ऊपर पूरे उतरते हैं, किसी और के ऊपर पूरे नहीं उतर सकते, जैसे गार वाला है ना, गार सौर वाला वाकया, और जो है वो गुलाम आजाद करने वाला जो आखिरी पारे के अंदर है, ठीक है, ये वाला मुकाम जो है इमक्कन्नाहुम फिल अर्दी, ये जो है वो चारों के ऊपर खुलफाए राशिदीन के ऊपर एक्सप्लिसिटली, ठीक है ना, क्योंकि हुकूमत किसी और को नहीं दी गई, अली रतान को दी गई लेकिन चौथे नंबर पे दी गई, पहले तीन को जो है वो तो ये थे, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना ये रवाफिस का जो मसला है ना वो ये है कि कुरान का इनकार किए बगैर जो है ना वो इनके दावों की जो है वो तस्दीक करी नहीं जा सकती, इनके दावों की तस्दीक हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो कुरान का इनकार के ऊपर अगर हम मुत्तफिक हैं कि भाई कुरान का इनकार करना जो है वो इंसान को इस्लाम से खारिज कर देता है, ठीक है, तो फिर कर लो जो करना है, ठीक है। तो कुरान से जैसे अबू बकर सिद्दीक रतान की एक्सप्लिसिटली साबित है, और जो है वो महातुल मोमिनीन की जो है वो एक्सप्लिसिटली अल्लाह ताला की रजा साबित है, और इवन सारे सहाबा की भी एक्सप्लिसिटली भी, ठीक है, सारे सहाबा की इन इन यानी कॉमनैलिटी भी सबके साथ शामिल है, उसी तरीके से यहाँ पर जो है वो ये खुलफाए राशिदीन की भी कुरान मजीद से साबित है। वही फरमा रहे हैं कि ये आयत इसकी दलील है कि खुलफाए राशिदीन सबके सब इसी बशारत के मुस्ताक हैं, और जो निज़ाम खिलाफत उनके जमाने में कायम हुआ वो हक व सही और ऐन अल्लाह ताला के इरादे और रजा और पेश की खबर के मुताबिक है। ये तो इस आयत की शान नुज़ूल का वाकियाती पहलू है, लेकिन ये जाहिर है, वाकियाती पहलू का मतलब शान नुज़ूल यानी ये किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर और किस वक्त नाजिल हुई थी और किन लोगों के लिए नाजिल हुई थी, लेकिन ये जाहिर है, बिल्कुल ऑब्वियस और एविडेंट और अपेरेंट और जाहिर यानी क्लियर है, ये जिसको हम अपने इंग्लू में बोलते हैं कि अल्फाज कुरान जब आम हों तो वो किसी खास वाक़े में मुनहसर नहीं होते, उनका हुक्म आम होता है। इसीलिए अइम्मा तफसीर में से वहाक रहमतुल्लाह ने फरमाया कि इस आयत में उन लोगों के लिए हिदायत भी है, उन लोगों के लिए हिदायत भी है कि जिनको अल्लाह ताला मुल्क सल्तनत अता फरमा दें कि वो अपने इक्तदार में ये काम अंजाम दें जो खुलफाए राशिदीन ने अपने वक्त में अंजाम दिए थे, ठीक है, यानी नमाज कायम करना, जकात देना और अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, ठीक है। अब इसको जो है वो आप मुल्की लेवल के ऊपर ले जाएं, या आप इसको सूबे स्टेट के लेवल के ऊपर ले जाएं, या आप उसको घर के लेवल के ऊपर ले जाएं, ठीक है ना, जो घर है उसके अंदर भी घर वाले की और घर वाले के बाद घर वाली की जिम्मेदारी बनती है कि वो नमाज कायम करें, जकात अदा करें और अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करें, ठीक है। अब उसका तरीका क्या है, वो तरीका जो है वो फिर अपने उलमा से और मशायख से सीखें, क्योंकि कोई काम भी जो करना होता है वो तरीका सीखे बगैर नहीं किया जा सकता है। नमाज कायम करो, अल्लाह का हुक्म पढ़ लिया ना आपने कुरान मजीद के अंदर, अब अगर किसी को नमाज का तरीका नहीं आता तो वो नमाज कायम कर सकता है, कर सकता है वो नमाज कायम, नहीं कर सकता ना भाई, उसने तो वजू नहीं सीखा, उसने तो नमाज के जो है वो फराइज नहीं सीखे, तरीका नहीं सीखा, वो नमाज कायम नहीं कर सकता। किसी को इसके ऊपर शक नहीं है ना, है शक किसी को कि नहीं तरीका सीखे बगैर ही मैं नमाज कायम कर लूंगी? है कोई ऐसी औरत, है कोई ऐसा मर्द जो कह सकता है? जकात अदा करना, जकात का तरीका नहीं सीखा तो आप जकात अदा कर सकते हैं? नहीं तरीका सीखा कि 22.5% सोने की जकात, चांदी की जकात, कैसे आपने अपने सारे के सारे असासे जो है वो जमा करने हैं, कैसे उनमें से जो है वो अकाउंट पेबल्स जो है वो सब्ट्रैक्ट करने हैं, है ना, किस चीज पे जकात होती है, किस चीज पे जकात नहीं होती, मकान पे होती है नहीं होती, किराए पे होती है नहीं होती, भाई जकात के मसाइल सीखे बगैर जकात नहीं दे सकते। अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर जो है ना वो एक ऐसी चीज है आज के मुसलमानों में कि जो कि तरीका सीखे बगैर करनी होती है, नहीं? जो कि बगैर तरीका सीखे, नहीं जी मुझे तो पहले से पता है जी क्या मारूफ है क्या मुनकर है, कैसे मारूफ का हुक्म करना है कैसे मुनकर का हुक्म करना है, जी मुझे तो पैदाइशी तौर पर, मैं तो माँ के पेट से इल्म लेकर के आया हूं, ठीक है ना, या मैंने किताबें पढ़ ली हैं, बस सब सब पता लग गया मुझे, बस मुझे आई नो एवरीथिंग, मुझे किस किसके ऊपर अमर करना है किसके ऊपर नहीं करनी है, है ना। बेगम साहिबा जो है वो शुरू हो जाती है अपने शौहर के ऊपर अमल बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, है ना, शौहर साहब जो है वो अपने उस्ताद के ऊपर और शेख के ऊपर शुरू हो जाते हैं अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करना, है ना, या ये जो है वो कहीं और मुआशरे में दफ्तर में कहीं ना कहीं, है ना, सीखना सिखाना इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो भैया आप नमाज भी बगैर सीखे ही पढ़ लिया करें, ठीक है ना, वो तो फ्री में अम्मा अब्बा ने सिखा दिया किसी तरीके से, कारी साहब ने सिखा दिया तो इस वजह से जो है वो सीख गए, वरना अगर हम पे छोड़ा जाता ना कि नमाज सीखो फिर उसके बाद पढ़ो तो हम तो वो भी ना सीखते, राइट। और ज़कात के अंदर ये है कि जी अगर बगैर सीखे देंगे तो कहीं ज्यादा ना निकल जाए, ठीक है, तो इस वजह से अच्छी तरीके से सवाल पूछ पूछ करके ज़कात कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो अमर बिल मारूफ जो है ये सीखने की चीज है, बगैर सीखे करेंगे तो फिर वही होगा के जिहाद नहीं होगा, फसाद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपकी जान छोड़ते हैं, आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।